मैं सुरेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए एक नए अध्याय वाताग्र का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। वाताग्र समान रूप में वाताग्र वह ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। जब अभिसरण कन्वर्जन करने वाली हवाओं के बीच विस्तृत संक्रमणीय प्रदेश ट्रांजिशनल जोन रह जाता है तो उसे वाताग्र प्रदेश फ्रंटल जोन कहते हैं। वाताग्र न तो धरातलीय सतह के समानांतर होता है और न उसके ऊपर लंबवत होता है, अपितु कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। वाताग्र की उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रिया को वाताग्र उत्पत्ति फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं, परंतु इस शब्द के प्रयोग के संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं। बरगुरान महोदय के अनुसार फ्रंटोजेनेसिस का तात्पर्य नए वाताग्र की उत्पत्ति से होता है। कुछ अन्य विद्वानों ने इस परिभाषा को विस्तृत करके फ्रंटोजेनेसिस शब्द का प्रयोग पुराने वाताग्र की पुनः उत्पत्ति के लिए किया है। श्रीवार्था महोदय के अनुसार वे क्षेत्र जहाँ पर विरोधी स्वभाव वाली हवाएं अभिसरित होती हैं वाताग्र उत्पत्ति के क्षेत्र कहे जाते हैं। पेटरसन महोदय के अनुसार वाताग्रयी सतह तथा धरातलीय सतह का प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं तथा जो प्रक्रिया वाताग्र का निर्माण करती है उसे वाताग्र उत्पत्ति फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। कुछ निर्दिष्ट दशाओं में वाताग्र नष्ट हो जाते हैं। इनके नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय फ्रंटोलिसिस कहते हैं। जब विभिन्न गुणों से युक्त दो वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं तो वे स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे से मिश्रित नहीं हो पाती हैं बल्कि एक दूसरे से पृथक रहने की प्रवृत्ति रखती हैं। अतः इन वायु राशियों के बीच अलगाव डिस्कंटिन्यूटी एक सीमा रेखा के सहारे बना रहता है। इसी सीमा रेखा को वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र वायु राशियों के बीच की संक्रमण मेखला है जो दोनों वायु राशियों के घनत्व भिन्नता के कारण खुद झुकती जाती है। इस झुकाव का कारण हल्की एवं गर्म हवा के सीमा रेखा के ऊपर उठने एक ठंडी हवा के सीमा रेखा के नीचे से होकर गर्म हवा के नीचे जाने की प्रवृत्ति है। वाताग्र की चौड़ाई 80 से 800 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, परंतु कभी-कभी इनका विस्तार 1000 से 3000 किलोमीटर तक पाया जाता है। वाताग्र 15 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आगे बढ़ता है तथा इस तल की चौड़ाई 5 से 100 किलोमीटर तक होती है। वाताग्र सीमा का ढलान मुख्यतः 1/200 के लगभग रहता है। वाताग्र कभी भी पूर्ण क्षैतिज या लंबवत नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण कोरियलिस बल है। वाताग्रों का ढाल ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। गर्म वातावरण का ढाल ठंडे वाताग्र की अपेक्षा कम पाया जाता है। वाताग्रों के कारण मौसम में पाया जाने वाला एकाएक मौसमी परिवर्तन तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, वाताग्र सतह का तीव्र ढलुआपन। दूसरा, ऊपर उठती गर्म वायु का स्थायित्व। तीसरा, वाताग्र विचरण की गति, जिसमें पहला वाताग्र सतह का तीव्र ढलुआपन। अधिक तीव्र ढलुआ सतह से बादलों की पतली पेटी का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप तेज बूंदाबांदी होती है। सपाट ढाल के कारण बादलों के चौड़े पेटी का निर्माण होता है तथा कोहरा एवं लगातार हल्की वर्षा होती है। तापमान में विभिन्नता एवं अक्षांशीय स्थिति से ही वाताग्र सतह का ढाल निर्धारित होता है। दूसरा, ऊपर उठती गर्म वायु का स्थायित्व। जब गर्म ऊपर उठती वायु अस्थायी होती है तब तो अवक्षेपण बूंदों के रूप एवं बादलों में अशांति उत्पन्न हो जाती है। यदि गर्म वायु अस्थायी है तो अवक्षेपण लगातार होता है तथा बादलों में बहुत कम अशांति होती है। तीसरा, वाताग्र की विचरण की गति। वाताग्र की गति का भी प्रभाव मौसम पर परिलक्षित होता है। यदि वाताग्र तेजी से चलता है तो गर्म वायु अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप अधिक अस्थायित्व, विक्षोभ एवं अक्षेपण पाया जाता है। वाताग्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रंट। इसमें पहला, उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। वाताग्र में जब गर्म वायु ठंडी वायु को हटाती है तो ऐसे वाताग्र को उष्ण वाताग्र कहा जाता है। गर्म भाग से वायु ढलुआ वाताग्र तल के सहारे चढ़ती हुई ऊपर उठती है, तब विस्तृत क्षेत्र पर विभिन्न बादलों का निर्माण होता है। गर्म वाताग्र तल का ढाल 1/80 से 1/500 के बीच पाया जाता है। अधिकांश वाताग्र का ढाल 1/300 होता है। इस वाताग्र का निर्माण धरातल से 15,000 या 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। गर्म वाताग्र में लंबवत चलन अधिक तेज नहीं होता है, इसलिए अस्तरी प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। सामान्यतया पच्छाब स्तरी, मध्य स्तरी एवं वर्षा स्तरी बादलों का निर्माण होता है। इनके द्वारा हल्की से लेकर मध्यम श्रेणी की तेज वर्षा होती है, लेकिन वर्षा लगातार एवं विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाती है। वर्षा क्षेत्र में कोहरा एवं अदृश्यता भी मिलती है। गर्म वाताग्र के आने पर उत्पन्न मौसम दोनों ऊपरी एवं निचली हवाओं एवं नमी की मात्रा उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि वाताग्र की ऊपरी गर्म वायु अस्थायी है तो पच्छाब स्तरी, मध्य स्तरी, वर्षा स्तरी प्रकार के बादलों का जन्म होता है तथा वर्षा लगातार होती है। यदि ऊपरी वायु अस्थायी हो तो अधिकांश बादल ऊर्ध्वाधर विकास, वर्टिकल डेवलपमेंट के होते हैं, खासकर मध्य कपासी, आल्टो क्यूमुलस, कपासी वर्षा, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। जब वाताग्र के नीचे की ठंडी वायु अस्थायी होती है तो अस्तरी एवं कपासी प्रकार के बादल उत्पन्न होते हैं, परंतु निचली ठंडी अस्थायी वायु के दौरान कपासी एवं कपासी वर्षा बादल बनते हैं। वायु राशियों में मौजूद नमी की मात्रा द्वारा यह निर्धारित होता है कि कुछ बादल या विस्तृत बादल बनेंगे एवं साथ ही साथ थोड़ी या अधिक वर्षा होगी। गर्म वाताग्र के गुजरने पर किसी स्थान के तापमान एवं दाब में वृद्धि हो जाती है। हवाओं में लगभग 45 डिग्री साउथ की तरफ परिवर्तन हो जाता है। मौसम में भी परिवर्तन पाया जाता है। इनके जाने पर होने वाली वर्षा समाप्त हो जाती है एवं आकाश से बादल छटने लगते हैं या समाप्त हो जाते हैं तथा मौसम साफ हो जाता है। दूसरा, शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट। जब ठंडी वायु राशि धरातल के ऊपर गर्म वायु राशि को विस्थापित करती है एवं गर्म वायु को ऊपर उठने के लिए बाध्य करती है तो ऐसे वाताग्र को शीत वाताग्र कहा जाता है। इसमें वाताग्र का ढाल 1/40 से 1/100 के बीच होता है। अधिकांश का ढाल 1/50 होता है। अधिक ढाल का एकमात्र कारण धरातलीय घर्षण है, जो धरातल पर चढ़ने वाली ठंडी वायु को पीछे खींचती है। इसका दूसरा कारण ठंडे वाताग्र का गर्म वाताग्र की अपेक्षा तेज चलना भी है। शीत वाताग्र के तीव्र ढाल के कारण मौसमी प्रभाव अधिक क्षेत्र पर फैला नहीं मिलता। मौसमी प्रभाव सिर्फ शीत वाताग्र के समीप ही पाया जाता है। ठंडे वाताग्र द्वारा उत्पन्न मौसमी घटनाएं अधिक प्रचंड होती हैं। उदाहरण स्वरूप भारी वर्षा, वायु का तेज झोंका, ओला एवं हिमपात है। इस वाताग्र में जब नम एवं अस्थायी वायु विस्थापित की जाती है तो मौसम तेज झोंका वाला होता है। जब नम एवं अस्थायी वायु विस्थापित होती है तो मौसम में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा तथा बादल पाए जाते हैं। अधिविष्ट वाताग्र ऑक्यूलेटेड फ्रंट, जब चक्रवाती तूफानों या विक्षोभों के कारण उष्ण एवं शीत दोनों वाताग्र मिलते हैं तो दोनों वाताग्रकों की ठंडी वायु राशियां नीचे हो जाती हैं तथा दोनों गर्म वायु को ऊपर ढकेल देती है, अर्थात गर्म वायु राशि का संपर्क जमीन से समाप्त हो जाता है एवं वाताग्र तल का निर्माण हो जाता है जिसको अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। अधिविष्ट वाताग्र की दो दशाएं मिलती हैं। यदि शीत वाताग्र नीचे की वायु राशि सबसे ठंडी है अर्थात गर्म वाताग्र की ठंडी वायु राशि से अधिक घनत्व वाली है तो ऐसे वाताग्र को शीत अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। इसके विपरीत यदि गर्म वाताग्र की ठंडी वायु शीत वाताग्र की वायु से ठंडी या अधिक घनत्व वाली है तो ऐसे वाताग्र को गर्म अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। चौथा अस्थायी वाताग्र स्टेशनरी फ्रंट, जो वाताग्र बहुत धीमे चलते हैं उनको अस्थायी वाताग्र या द्वितीयक वाताग्र कहा जाता है। इस तरह के वाताग्र ठंडे या गर्म वाताग्र विकसित होते हैं लेकिन अक्सर गर्म वाताग्र में ही बनते हैं। सही रूप में ये अस्थायी वाताग्र बहुत कम मिलते हैं। ऐसी दशा में दोनों वायु राशियां वाताग्र तल से इस तरह अलग होती हैं कि वे एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं एवं उनका ऊपर उठना बंद हो जाता है। इस तरह के वाताग्र का निर्माण मुख्य वाताग्र के किसी क्षेत्र में कई दिन तक रुक जाने एवं मंद पड़ जाने से होती है। इसमें पवन गति अत्यंत धीमी होती है। वाताग्र प्रदेश फ्रंटल रीजन, वाताग्र की उत्पत्ति ऐसे क्षेत्र में होती है जहां पर हवाएं अभिसरित होती हैं। वाताग्र किसी धरातल पर आकस्मिक रूप से उत्पन्न होकर एक दिशा में बढ़ते हुए एवं अपना जीवन चक्र पूरा करके मौसम में एकाएक परिवर्तन लाते हुए समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ अस्थायी रूप से पाए जाते हैं। धरातल पर वाताग्र के निम्नलिखित प्रदेश पाए जाते हैं। पहला, अटलांटिक ध्रुवीय वाताग्र, अटलांटिक पोलर फ्रंट रीजन। जाड़े के दिनों में उत्तरी अमेरिका की ठंडी महाद्वीपीय वायु राशि तथा नजदीकी अटलांटिक महासागर की गर्म वायु राशि के मिलने के कारण अटलांटिक ध्रुवीय वाताग्र बनता है। यह वाताग्र क्षेत्र अटलांटिक तट के समीप पाया जाता है जो उत्तर में दक्षिणी पूर्वी कनाडा तक फैला होता है। वाताग्रों का क्षेत्र बदलता रहता है तथा जाड़े में ये भूमध्य रेखा की तरफ खिसकते हैं। इस मौसम में अटलांटिक ध्रुवीय वाताग्र मैक्सिको खाड़ी तक पहुंच जाते हैं। इस उत्पत्ति के फलस्वरूप न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण में विक्षोभ उत्पन्न होकर यूरोप को प्रभावित करते हैं। गर्मी में यह क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ तक स्थानांतरित हो जाता है लेकिन वाताग्र कमजोर होता है। दक्षिणी गोलार्ध में यह वाताग्र क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के पास ध्रुवों की तरफ झुका हुआ पाया जाता है। दूसरा, प्रशांत ध्रुवीय वाताग्र पैसिफिक पोलर फ्रंट। प्रशांत ध्रुवीय वाताग्र भी भूमध्य रेखा की तरफ खिसकता है। प्रशांत महासागर के ऊपर पाए जाने वाला उपोष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवात जाड़े में दो कोशिकाओं में टूट जाता है जिसके बीच एक कॉल क्षेत्र का प्रादुर्भाव होता है। इस क्षेत्र में एशिया की ठंडी महाद्वीपीय एवं उत्तरी प्रशांत की उपोष्ण कटिबंधी वायु राशियां आकर मिलती हैं, जिससे एशियाई तट के पास वाताग्र बनते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई तट के समीप बहुत कम पाए जाते हैं। गर्मी में ये वाताग्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण उत्तर की तरफ खिसक कर साइबेरिया के पूर्वी तट पर स्थापित हो जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी स्थिति दक्षिणी प्रशांत महासागर पर पाई जाती है। तीसरा, भूमध्य सागरीय वाताग्र, मेडिटेरेनियन फ्रंट। ये वाताग्र जाड़े में भूमध्य सागर तथा कैस्पियन सागर के क्षेत्रों पर स्थायित रहते हैं, जब ठंडी महाद्वीपीय ध्रुवीय हवाएं, जो कि साउथ ईस्ट यूरोप से आती हैं, उत्तरी अफ्रीका से आई गर्म वायु राशियों से भूमध्य सागरी बेसिन पर मिलती हैं, तो वाताग्र की उत्पत्ति होती है। तापमान में विभिन्नता अनुकूल परिस्थितियों के समय से अधिक तीव्र हो जाती है। यहाँ से उत्पन्न विक्षोभ पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जाड़े की वर्षा इन्हीं विक्षोभों से होती है, जिनका मार्ग थोड़ा दक्षिण की तरफ होता है। हमारे यहाँ इन विक्षोभों को पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े की वर्षा इन्हीं वाताग्र से होती है, लेकिन गर्मी में ये समाप्त हो जाते हैं, अतः गर्मी का मौसम शुष्क होता है। चौथा, आर्कटिक वाताग्र, आर्कटिक फ्रंटल रीजन। यह उच्च अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों पर विकसित होता है। गर्मी में यह वाताग्र क्षेत्र साइबेरिया के आर्कटिक तट एवं उत्तरी अमेरिका के पास विकसित होता है। गर्मी में इसकी तीव्रता कम रहती है। जाड़े में यह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के ऊपर महाद्वीपीय आर्कटिक या ध्रुवीय तथा प्रशांत महासागरीय हवाओं के मिलने के कारण बन जाता है। आर्कटिक वाताग्र का कम तीव्र क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक एवं नॉर्वेजियन सागर पर पाया जाता है, जो साइबेरियाई तट तक फैला होता है। दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह का कमजोर वाताग्र प्रदेश पाया जाता है, जो 60 से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में प्रशांत महासागरीय अंटार्कटिका के ऊपर विस्तृत होता है, लेकिन यहाँ से कम चक्रवात बनते हैं। पांचवा, अंतरा उष्ण कटिबंधी वाताग्र प्रदेश, इंटर ट्रॉपिकल फ्रंटल रीजन। भूमध्य रेखी निम्न दाब पर उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाओं के मिलने से इस वाताग्र का निर्माण होता है। यहाँ पर व्यापारिक हवाओं के अभिसरण के कारण हवाएं ऊपर उठकर पर्याप्त वर्षा करती हैं। यह प्रदेश गर्मियों में उत्तर की ओर तथा जाड़े में दक्षिण की ओर सरकता रहता है। इस क्षेत्र में जून एवं जुलाई के महीने में दक्षिणी एशिया एवं पश्चिमी अफ्रीका के ऊपर वाताग्र अधिक क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि इस महाद्वीपीय एवं सागरी हवाओं की विभिन्नता सर्वाधिक होती है। नया अध्याय, संघनन के रूप, फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। बादल, इसमें पहले हम संघनन के बारे में पढ़ेंगे कि संघनन क्या है। संघनन, कंडेंसेशन, सामान्य रूप से जलवाष्प के जल कण, हिम कण या दोनों में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। सामान्य रूप से जलवाष्प के जल कण, हिम कण या दोनों में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। इसी संघनन के फलस्वरूप वर्षा संभव हो पाती है। संघनन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वायु के आयतन, तापमान, दबाव एवं आर्द्रता से संबंधित है। संघनन के लिए निम्न दशाएं आवश्यक होती हैं। पहला, वायु का तापमान घटता जाए परंतु उसका आयतन समान बना रहे एवं वायु उष्मांक बिंदु तक ठंडी हो जाए। दूसरा, वायु का आयतन बिना ऊष्मा परिवर्तन के बढ़ता जाए। इस प्रक्रिया में वायु के आयतन में विस्तार के साथ तापमान घटता है क्योंकि आयतन बढ़ने के साथ वायु को कार्य करना पड़ता है जिससे कुछ तापमान नष्ट हो जाता है। तीसरा, तापमान एवं आयतन में इस प्रकार की संयुक्त परिवर्तन हो कि वायु की वाष्प ग्रहण करने की क्षमता विद्यमान वाष्प की मात्रा से कम हो जाए। गर्म एवं नम वायु जब ठंडे धरातल पर से गुजरती है तो इसका तापमान इतना कम हो जाता है कि वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता मौजूद जलवाष्प से कम हो जाती है जिससे क्षमता के अतिरिक्त जलवाष्प संघनन के द्वारा ओस, कोहरा एवं पाला के रूप में ठंडे धरातल पर विद्यमान हो जाता है। इस संघनन के फलस्वरूप कुछ ऊष्मा गुप्त रूप से निकलती है जिसको संघनन की गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। जब विभिन्न तापमान एवं जलवाष्प की विशेषताओं वाली वायु राशियां एक दूसरे से मिश्रित होती हैं तो संघनन प्रारंभ हो जाता है। इस मिश्रण में उत्पन्न वायु राशि मध्य तापमान पर इंटरमीडिएट टेम्परेचर अति संतृप्त ओवर सैचुरेटेड हो जाती है जिससे बादल बनते हैं। संघनन की सबसे प्रभावी दशा गतिक या एडियाबेटिक रेट से ठंडे होने की है। एडियाबेटिक रेट से ठंडी होने की प्रक्रिया धरातल पर बैरोमेट्रिक दाब घटने, संवहन तथा वाताग्रों एवं पर्वतों के सहारे वायु के ऊपर उठने से होती है। एडियाबेटिक कूलिंग विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास ठंडे धरातल के संपर्क या ठंडी वायु के मिश्रण से होती है। संघनन के रूप, फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। पहला इसमें कोहरा, फॉग। विलियम डान के शब्दों में कोहरा संघनन का एक सामान्य रूप है जो धरातल के निकट की वायु का तापमान उसके मौलिक उषांग के नीचे गिर जाने पर निर्मित होता है। त्रिवार्था के अनुसार कोहरा एक ऐसा अस्तरी बादल है जो धरातल के इतना अधिक निकट होता है कि उससे वायुमंडल की दृश्यता कम हो जाती है। दूसरा, कुहासा एवं धुंध, मिस्ट एंड हेज। जब भूमि सतह के पास वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर जल कणों में बदल जाते हैं, ये कण सतह से कुछ ऊंचाई तक धूल कण के सहारे लटके रहते हैं। जब जल कणों की सांद्रता अधिक एवं दृश्यता 1 किमी से कम होती है तो उसे कोहरा कहते हैं। लेकिन जब जल कणों की संख्या एवं दृश्यता 1 किमी या इससे अधिक होती है तो उसको कुहासा एवं धुंध कहा जाता है। जब दृश्यता जलवाष्प से संबंधित होती है तो उसको कुहासा कहते हैं तथा जब दूसरे पदार्थों से, धूल या धुआं से संबंधित होती है तो उसको धुंध कहा जाता है। तीसरा, स्मॉग। जब धुआं, धूल एवं हानिकारक गैसें कोहरा के साथ मिल जाती हैं तो उसको स्मॉग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब विभिन्न प्रदूषक कोहरे के साथ मिलकर वायुमंडल के निचले तह में या भूमि तल से थोड़ी ऊंचाई पर एक तह का निर्माण करते हैं तो इसे स्मॉग कहा जाता है। स्मॉग एक जहरीली जानलेवा वायु प्रदूषक है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और पेरोक्सी एस एसाइल नाइट्रेट जैसे हानिकारक गैसें पाई जाती हैं। चौथा ओस ड्यू। वायु का तापमान कभी कभी वसांग बिंदु के नीचे पहुंच जाता है तो वायु में विद्यमान जलवाष्प जल कणों में परिवर्तित होकर किसी वस्तु पर इकट्ठा हो जाता है जिसको ओस कहते हैं। वनस्पतियों से निकली जलवाष्प भी ओस के रूप में बन सकती है। ओस निर्माण में सहायक दशाओं में स्थिर गर्म स्थिर वायु, गर्म दिन, स्वच्छ आकाश, लंबी रातें, वायुमंडल में अधिक आर्द्रता एवं वनस्पतियों की उपस्थिति आवश्यक है। पांचवा पाला फ्रॉस्ट। ठंडे होने की प्रक्रिया में जब ओसांक हिमांक से नीचे पहुंच जाता है तो जल वाष्प जल कणों में नहीं अपितु हिम कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कण पृथ्वी तल पर या किसी वस्तु पर एकत्रित हो जाते हैं जिसे पाला कहा जाता है। पाला पड़ने के लिए वायु का तापमान तेजी से घटना और ओस जैसी परिस्थिति चाहिए, परंतु ओसांक का हिमांक के नीचे आना जरूरी है। छठा रिम। जब पाला एवं नम कोहरा दोनों एक साथ पड़ते हैं तो रुच हिमकण हवा की दिशा में या खुली वस्तु पर जमा हो जाते हैं। उसको मुलायम रिम सॉफ्ट रिम कहा जाता है। लेकिन जब हिमकण आर्द्र वायु से या कुहासे से लंबवत विस्तार वाले धरातल पर पाए जाते हैं तो इसको कड़ा रिम हार्ड रिम कहा जाता है। सातवां बादल क्लाउड। बादल जल शिखरों अथवा हिम शिखरों का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है जो कि कोहरे की अपेक्षा ऊंचाई पर पाया जाता है। जब ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र हवा की एडियाबैटिक तापमतन दर आसपास की वायु के तापमतन दर से कम हो तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है तथा ओसांग के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है। जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न होता है तो जल शिखरों का हिमांक के नीचे हिम शिखरों का निर्माण होता है। इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है तथा अधिक मात्रा में हो जाने पर इनका समूह बादल की रचना करता है। यह संघनन धूल धुआं सॉल्ट या CO2 के सहारे ही होता है जिनको जलग्राही केंद्रक हाइड्रोग्राफिक न्यूक्लियाई कहते हैं। बादलों के कण वायुमंडल में वायु के कर्षण प्रतिरोध के कारण ही लटके रहते हैं। जब बादल कणों का भार कर्षण प्रतिरोध के ठीक बराबर हो जाता है तो कण जिस वेग से नीचे गिरता है वह उसका अंतिम वेग कहलाता है। बड़े कण छोटे कण की अपेक्षा तीव्र गति से गिरता है। जिन बादलों की उत्पत्ति वायु के प्रबल तरंगों से होती है उनका स्वरूप धुनी हुई रुई के समान होता है, परंतु जिन बादलों का विकास वायु के धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण होता है उनका निर्माण परतों में होता है। बादल विभिन्न ऊंचाई पर पाए जाते हैं परंतु समताप मंडल में इनका सर्वथा अभाव होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बादलों की ऊंचाई में अंतर आता जाता है। निम्न अक्षांशों से इनकी ऊंचाई उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। बादलों का किसी भी स्थान के मौसम तथा जलवायु पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एडियाबैटिक प्रोसेस द्वारा वायु के ठंडा होने एवं उसके तापमान के ओसांक के नीचे गिरने के कारण बादलों का निर्माण होता है। बादलों की न्यूनतम ऊंचाई ध्रुवीय प्रदेशों एवं जाड़े के दिनों में पाई जाती है। बादलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड। बादलों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, संरचना, आकृति, रंग एवं प्रकाश परावर्तन के गुणों के आधार पर किया जाता है। ब्रिटेन के ल्यूक होवार्ड ने 1803 ईस्वी में आकृति के आधार पर बादलों को तीन भागों में बांटा। अति ऊंचे पक्षी के परों के रूप में फैले हुए बादल को पच्छा बादल, साइरस। कपास के ढेर के समान बादलों को कपासी बादल, क्यूमुलस। तथा तो स्तरों में विस्तृत बादल को स्तरी बादल, स्ट्रेटस कहा जाता है। 1932 ईस्वी में किए गए अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखा गया है तथा बादलों को चार प्रमुख प्रकारों तथा 10 उप प्रकारों में विभक्त किया गया। इस वर्गीकरण में ऊंचाई को वरीयता दी गई। ए उच्च बादल, हाई क्लाउड्स। उच्च बादल 6000 से 16000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उच्च बादल हिमकण से निर्मित होते हैं। ये बादल शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जबकि ये आर्कटिक अंटार्कटिक में कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें पहला पश्चात बादल, साइरस क्लाउड। पश्चात बादल लगभग पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, सफेद रेशों जैसे या रेशमी होते हैं। ये पक्षी के परों के समान दिखाई पड़ते हैं। ये बादल पानी के बादलों से पतले एवं दुर्बल होते हैं। पश्चात बादल अधिक ऊंचाई पर हिमकणों द्वारा बनते हैं। अक्सर पश्चात बादल गर्म वाताग्र क्रिया, वार्म फ्रंट एक्टिविटी के फलस्वरूप ही बनते हैं। पश्चात बादल में मौजूद हिमकणों को द्वारा प्रकाश प्रत्यावर्तन, रिफ्रैक्शन के फलस्वरूप प्रभामंडल, होलोस्फीयर का निर्माण होता है। मुख्य प्रभामंडल बाईस अंश का प्रभामंडल है, जो सूर्य एवं चंद्रमा से 22 अंश दूर बनता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में सूर्य डॉग, सन डॉग्स एवं चंद्रमा डॉग, मून डॉग्स हैं। ये भी बादलों के हिम द्वारा प्रकाश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप ही बनते हैं। सूर्य या चंद्रमा डॉग अक्सर चमकीले रंग के दाग, ब्राइट स्पॉट होते हैं, जो सूर्य या चंद्रमा से 22 अंश दाहिने या बाएं पाए जाते हैं। दूसरा, पच्छाप कपासी बादल, साइरो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये बादल तल या छोटे छोटे सफेद बर्फ के गुच्छों की तरह होते हैं। सामान्यतः ये एक रेखा या लहर के रूप में मिलते हैं। ये सदैव नहीं बनते हैं। ये बादल उस समय तक नम नहीं पहचाने जा सकते हैं जब तक कि इनका संबंध पश्चात बादलों से नहीं हो जाता है। इनमें मुख्यतः हिमकण एवं शीतल जलकण पाए जाते हैं। इनका निर्माण अक्सर पश्चात एवं स्तरी बादलों के पिघलने से होता है। तीसरा, पश्चात स्तरी बादल, साइरो स्ट्रेटस क्लाउड्स। पश्चात स्तरी पतले सफेद तहों के बादल हैं। ये पारदर्शक होते हैं, अतः सूर्य, चंद्रमा एवं तारे स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। ये अक्सर बड़े क्षेत्र में फैले या पूरे आकाश में फैले मिलते हैं। पश्चात स्तरी इतने मोटे कभी नहीं होते कि किसी चीज की परछाई जमीन पर प्रदर्शित कर सके। इनमें प्रभामंडल भी खुद मौजूद रहता है। बी मध्यम मंडल, मिड क्लाउड्स या अल्टो क्लाउड्स। ये बादल 2500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अधिकांश मध्यम बादल जल कण से युक्त होते हैं। मध्य एवं उच्च अक्षांशों की अधिकांश मध्यम बादल सक्रिय वाताग्र से संबंधित होते हैं। अन्य बादल तड़ित झंझा से संबंधित होते हैं जो उष्ण कटिबंधों में मिलते हैं। कुछ मध्यम बादल मध्य परिवर्तन मंडल में उठती संचार वायु के कारण भी बनते हैं। इसमें ए मध्य कपासी बादल अल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स, ये गोलाकार ग्लोब्यूलर बादलों की तहों के रूप में मिलते हैं। सामान्यतः ये रेखाओं वर्गों या लहर के रूप में संगठित होते हैं। इनकी तहें इतनी मोटी होती हैं कि साधारणतः सूर्य की किरणें भी इनके द्वारा रुक जाती हैं। ये कभी कभी लंबवत भी लटके मिलते हैं। ये बादल वायुमंडल में प्रतिलोमन के ठीक नीचे भी मिलते हैं। इनका निर्माण कपासी बादलों के बिगड़ने के बाद भी होता है। कुछ निर्माण अस्थिर वायु से संबंधित वातागृहीय क्रियाओं से भी होता है। इनका रंग भूरा या श्वेत होता है। बी दूसरा मध्य स्तरीय बादल ऑल्टो स्टेटस क्लाउड। मध्य स्तरीय बादल भूरे या नीले भूरे रेशेदार बादलों की चादर है। ये पच्छाब स्तरीय से भी मोटे होते हैं। इन बादलों का परिवर्तन पच्छाब स्तरीय से भी हो जाता है। इन बादलों के द्वारा प्रभामंडल का निर्माण नहीं होता है। इनके द्वारा सूर्य या चंद्रमा की चारों ओर कोरोना लाइक डिस्क का निर्माण होता है। कोरोना का निर्माण जल कणों द्वारा प्रकाश की किरणों के विवर्तन डिफ्रेक्शन से होता है। मध्य स्तरीय बादलों से हल्की वर्षा या हिमपात होती है जो कभी भूमि तक भी पहुंच जाती है। कभी कभी इनका रास्ते में ही वाष्पीकरण हो जाता है। जब वर्षा एवं बादल बनने की दशाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं तो मध्य स्तरीय वर्षा स्तरीय बादलों में परिवर्तित हो जाती है। इनके द्वारा आकाश का रंग दुधिया मिल्की हो जाता है। सी निम्न बादल लो क्लाउड्स। जब मध्य स्तरीय बादल अधिक घनत्व के कारण नीचे आकर मोटे और गहरे रूप धारण करके वर्षा करते हैं तो उनको निम्न स्तरीय बादल कहा जाता है। ये बादल सूर्य की किरणों को भी रोक देते हैं। इस प्रकार के बादल धरातल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये बादल 50 मीटर तक मोटे होते हैं। ये बादल ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक अधिकाधिक पाए जाते हैं। इसमें पहला वर्षा स्तरीय बादल निम्बो स्टेटस क्लाउड। धरातल के नजदीक पाए जाने वाले काले रंग के ये घने बादल किसी आकार में हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार तक छा जाता है तथा खूब वर्षा होती है। दूसरा स्तरीय बादल स्टेटस क्लाउड। ये बादल जमीन के नजदीक कुहरे जैसे होते हैं जो भूरे रंग के समतह पे पाए जाते हैं लेकिन धरातल से सटे नहीं होते हैं। जब ये बादल हवा धारा कई भागों में विभाजित हो जाते हैं तो इनको फ्रैक्टो स्टेटस कहा जाता है। इन बादलों से थोड़ी वर्षा होती है। स्थिर वायु से स्तरीय बादल बनते हैं। इन बादलों को कुछ स्थानों पर उच्च कोहरा हाई फॉग भी कहा जाता है। तीसरा स्तरीय कपासी बादल स्टेटो क्यूमुलस क्लाउड्स। स्तरीय तथा स्तरीय कपासी दोनों का विस्तार लंबे चौड़े क्षेत्र पर पाया जाता है। स्तरीय कपासी बादलों की उत्पत्ति अस्थिर वायु से होती है। ये बादल भूरे रंग के गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। चौथा इट मीन्स डी ऊर्ध्व विस्तार के बादल। ऊर्ध्व विस्तार के बादल अनियमित आकृति खासकर डोम या टावर के समान दिखाई पड़ते हैं। इस तरह के बादल काफी संख्या में एक साथ मिलते हैं, जिनका आधार क्षैतिज लगभग एक सा रहता है। जिसमें पहला कपासी बादल क्यूमुलस क्लाउड अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं। प्रायः ये लंबे रूप में होते हैं, जिनकी ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होता है, परंतु आधार समतल होता है। इनसे प्रायः साफ मौसम का आभास होता है, परंतु कभी कभी ये गरजने वाले बादल बन जाते हैं। ये बादल अस्थिर वायु की दशा में तीव्र लंबवत धराव से संबंधित होते हैं। ये उष्णकटिबंध में साल भर एवं मध्य अक्षांश में गर्मी के मौसम में बनते हैं, जबकि उच्च अक्षांशों में ये सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। क्यूमुलस ह्यूमिलिस साफ मौसम के विचित्र बादल हैं, जब कपासी बादल में अधिक ऊर्ध्व विस्तार पाया जाता है तो इनको क्यूमुलस कंजेस्टस कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के बादलों से मध्य अक्षांशों में यदा कदा ही वर्षा होती है, जबकि उष्ण कटिबंधों में खूब वर्षा होती है। दूसरा कपासी वर्षा बादल क्यूमुलस निम्बस क्लाउड या थंडर क्लाउड। कपासी वर्षा बादल बादलों के घने रूप हैं, जिनका ऊर्ध्वाधर विस्तार अधिकतम होता है। इनके ऊपरी भाग की बनावट चिकने रेशे के समान होती है, जो अक्सर निहाई एनविल के रूप में फैली होती है। इनके द्वारा ओला बिजली एवं तड़ित झंझा के साथ तेज वर्षा होती है। नया अध्याय वर्षण प्रेसिपिटेशन। वर्षण जल की उस मात्रा को कहते हैं जो तरल रूप में या ठोस रूप में पृथ्वी पर आता है और क्षेपण संघनन या वाष्पीकरण के बाद तरल या ठोस रूप ठोस में परिवर्तित सम्प्लीमेशन होने के क्रिया के बाद या दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण शुरू होता है। वर्षण की प्रक्रिया की शुरुआत उठती वायु से संबंधित होती है। कुहरा ओस एवं तुषार को वर्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। वर्षा वर्षण से मिलता जुलता शब्द है, परंतु वर्षा के अंतर्गत सिर्फ तरल रूप में होने वाली वर्षा को ही सम्मिलित किया जाता है। सामान्य तौर पर वर्षण के कुल मात्रा में सिर्फ हिम एवं वर्षा को ही रखा जाता है। वर्षण के रूप फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। वर्षण के रूपों में फुहार ड्रिजल बौछार शावर वर्षा रेन हिमकारी वर्षा फ्रीजिंग रेन या ग्लेज सहिम वृष्टि स्लिट बर्फबारी स्नोफॉल बर्फ गोली स्नो पिलेट्स हिम गोली तथा हिम सूचिका आइस पिलेट एंड आइस नीडल एवं वोला होल हेल आते हैं। जब तापमान हिमांक से नीचे होता है तो वर्षण हिमकणों के रूप में होती है, जिसे हिमपात स्नोफॉल कहा जाता है। जल वृष्टि और हिमपात के मिश्रण को सहिम वृष्टि स्लिट कहा जाता है। जब धरती के पास वाली हवा की परत का तापमान हिमांक से ऊपर है तो ऐसी परिस्थिति में स्लिट होती है। जब बर्फ की कड़ी एवं बड़ी गोलियों की बौछार होने लगती है तो इसे ओला हेल पड़ना कहा जाता है। ओला में बर्फ की कई सेकेंडरी परतें पाई जाती हैं। जब वर्षा की बूंदें अत्यंत सूक्ष्म सघन एवं समान आकार की होती हैं तथा वायु प्रवाह की दिशा में उड़ती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसी वृष्टि को फुहार ड्रिजल कहा जाता है। फुहार में जल कणों का आकार 0.5 सेंटीमीटर से भी कम होता है। वर्षण होने की प्रक्रिया, मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। इसमें पहला, वायु में शीतलन उत्पन्न होने की प्रक्रिया। अब मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस कूलिंग ऑफ द एयर। इसमें ए, कम दबाव की तरफ क्षैतिज संचार से उत्पन्न रुद्धोष्म शीतलन। एडियाबेटिक कूलिंग बाय हॉरिजॉन्टल मोशन टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। बी, विकिरण शीतलन, रेडिएशनल कूलिंग। सी, ठंडे स्थल या सागरी धरातल के संपर्क से उत्पन्न शीतलन। कूलिंग बाय कॉन्टैक्ट विद अ कोल्डर लैंड आर सी सरफेस। डी, दो वायु राशियों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ टू एयर मासेस। उपयुक्त इन प्रक्रियाओं के द्वारा सिर्फ थोड़ी मात्रा में हल्की बूंदाबांदी एवं कोहरा उत्पन्न होती है। ई, धरातल के नजदीक से वायुमंडल के ऊपरी तल तक उठने वाली वायु के दबाव में कमी। द प्रेशर रिडक्शन व्हेन एयर एसेंड फ्रॉम नियर सरफेस टू अपर लेवल इन द एटमॉस्फियर। इस प्रक्रिया से विशद एवं पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। इस विधि से तापमान इतना निम्न हो जाता है कि सभी प्रकार की वर्षा संभव हो पाती है। दूसरा, संघनन उत्पन्न होने की प्रक्रिया, अ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस कंडेंसेशन। संघनन प्रारंभ होने की दशाएं। ए, वायु का तापमान कम हो जाए लेकिन इसका आयतन स्थिर रहे और वायु ओसांग बिंदु तक ठंडी हो जाए। बी, बिना ऊष्मा वृद्धि के वायु का आयतन बढ़ जाए। सी, वायु के तापमान और आयतन में संयुक्त कमी उसकी नमी धारण करने की क्षमता को विद्यमान नमी की मात्रा से कम कर दे। संघनन के लिए प्रयुक्त प्रमुख दशा संपर्क की शीतलन, विभिन्न तापमान की वायु राशियों की मिश्रण तथा वायुमंडल के गतिक शीतलन द्वारा वायु तापमान का नीचे गिरना है। वायुमंडल में संघनन सदैव जलग्राही केंद्रक के सहारे प्रारंभ होता है। सोडियम क्लोराइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड जलग्राही केंद्रक के अच्छे उदाहरण है। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में नमी एकत्र करने की प्रक्रिया, अ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर ऑफ सफिशियंट अमाउंट। वायुमंडल में पर्याप्त नमी का एकत्रित होते रहना भी अनिवार्य है, जिससे कि वर्षा होने के पश्चात पुनः संघनन तथा वर्षा हो सके। नमी की मात्रा वाष्पीकरण के फलस्वरूप वायुमंडल में पहुंचती है, अतः वाष्पीकरण की प्रक्रिया का निरंतर जारी रहना भी जरूरी है। चौथा, जल कणों के विकास की प्रक्रिया, अ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस ग्रोथ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। इसमें ए, बर्जरॉन फिंडरसन का बादल अस्थिरता का सिद्धांत, बर्जरॉन फिंडरसन थियोरी ऑफ अनस्टेबल क्लाउड्स। अस्थिर बादल में हिमांक के नीचे तापमान होने पर जल की बूंदें एवं हिमकण आइस क्रिस्टल साथ साथ होते हैं। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी जल सतह की अपेक्षा हिम सतह पर अधिक होती है। जब तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो वायुमंडलीय वाष्प दाब का जल सतह की अपेक्षा हिम सतह पर तेजी से घटता है, जिस कारण संतृप्त वाष्प दाब हिमतल की अपेक्षा जल तल पर अधिक हो जाता है। इस स्थिति में तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड जल बूंद अति शीतल का वाष्पीकरण हो जाता है और वह हिमकण के चारों ओर संग्रहित हो जाता है, जिस कारण जल बूंदों के निर्माण के लिए आर्द्रता ग्राही नाभिक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की आवश्यकता होती है। उसी तरह हिमकण के निर्माण के लिए हिमायनाभिक फ्रीजिंग न्यूक्लियाई आवश्यक होते हैं। ये फ्रीजिंग न्यूक्लियाई सूक्ष्म मृदा कण, उल्का धूल, मेटियोरिक डस्ट, ज्वालामुखी धूल आदि से प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे हिमकण बढ़ते जाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इन कणों के संवर्धन एग्रेग्रेशन के लिए आदर्श होता है। जब हिमकण बड़े आकार के होते हैं हो जाते हैं तथा उनके नीचे गिरने की रफ्तार वायु की ऊपरमुखी प्रवाह गति से अधिक हो जाती है तो ये हिमकण नीचे गिरने लगते हैं। हिमकण जब 0 सेंटीग्रेड से अधिक गर्म व मोटी वायु की परत से होकर नीचे गिरते हैं तो ये जल वर्षा की बूंदों में बदल जाते हैं तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है। बी, टकराव सिद्धांत, कोलेजन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार वर्षा की बूंदों का निर्माण तथा विस्तार टकराव सम्मिलेशन कोएंसेंस तथा समेटन स्वीपिंग द्वारा होता है। प्रारंभिक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि वायुमंडलीय विक्षोभ टर्बुलेंस के कारण बूंदें आपस में टकराती हैं जिस कारण संचयित होकर आकार में बढ़ जाती है। इस परिकल्पना की दो कठिनाइयां सामने आती हैं। पहला, टकराने के कारण बूंदों में सम्मिलन न होकर उनमें टूटने ब्रेकिंग तथा बिखराव का अधिक होना। दूसरा, तूफानी एवं गरज वाले बादलों से वर्षा कम होता है। आगे चलकर लैंग म्यूर ने इस सामान्य टकराव सिद्धांत में संशोधन प्रस्तुत किया था, बताया कि बूंदों में व्यास के आधार पर गिरने की गति में अंतर होता है। बड़ी बूंदों छोटी बूंदों की अपेक्षा तेज गति से गिरती हैं, परिणाम स्वरूप बड़ी बूंदें छोटी बूंदों को आत्मसात कर लेती हैं तथा तेज गति के साथ अपनी ओर समेट स्वीप कर अपना आकार और बड़ा लेती हैं। बूंदों के आपस में मिलने के लिए आवश्यक है कि उनकी अर्धव्यास 19 माइक्रोन से अधिक हो। सम्मिलन द्वारा वृद्धि की रफ्तार प्रारंभ में मंद होती है, परंतु आगे चलकर यह तेज हो जाती है। 20 माइक्रोन त्रिज्या वाली बूंदें 50 मिनट में 200 माइक्रोन वाली त्रिज्या वाली हो जाती हैं। जब बूंदों का आकार इस तरह बड़ा हो जाता है तो वे आकाश में निलंबित नहीं रह पाती और वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। जल वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना अधिक महत्वपूर्ण है। वायु तीन रूपों में ऊपर उठती है। पहला, धरातल के अधिक गर्म हो जाने के कारण वायु हल्की होकर संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती है। दूसरा, हवा पर्वत के सहारे उठती है। तीसरा, चक्रवातों में वाताग्र या सीमांत के सहारे गर्म वायु ऊपर उठती है। यह आवश्यक नहीं है कि हवा के ऊपर उठने में किसी एक ही कारक का हाथ होता है, प्रायः एक से अधिक कारक भी एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभावशाली कारक के आधार पर ही वर्षा के रूप का निर्धारण किया जाता है। इन आधार पर वर्षा को तीन प्रकार में विभक्त किया जाता है। ए, संवहनी जल वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। बी, पर्वतीय जल वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। सी, चक्रवाती जल वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। ए, संवहनी जल वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दिन में अत्यधिक ऊष्मा के कारण धरातल गर्म हो जाता है, जिस कारण वायु गर्म होकर फैलती है तथा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। शुष्क एडियाबेटिक रेट से प्रति हजार मीटर पर इस वायु का तापमान 10 डिग्री तक कम होने लगता है, जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। शीघ्र ही वायु संतृप्त हो जाती है तथा पुनः ऊपर उठने पर संघनन प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु में मिल जाती है, जिससे वायु पुनः ऊपर उठने लगती है और अंततः उस सीमा को पहुंच जाती है जहां पर स्थित वायु का तापमान इसके बराबर हो जाता है। इस अवस्था में संघनन के बाद कपासी एवं कपासी वर्षा मेघ का निर्माण होता है तथा तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ऊपर उठती वायु शीघ्र ठंडी होती है तथा अतः संवहनी वर्षा मूसलाधार रूप में होती है। चूंकि कपासी वर्षा मेघ आकाश में सीमित क्षेत्र में होते हैं, अतः उनके शीघ्र छट जाने पर वर्षा जल्दी रुक जाती है, परंतु न्यूनतम समय में अधिकतम वर्षा होती है। वर्षा बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ होती है। इस तरह की वर्षा मुख्य रूप से भूमध्यरेखीय भागों में होती है, जहां पर प्रतिदिन दोपहर तक धरातल के गर्म होने के कारण संवहन धाराएं उठने लगती हैं तथा 2-3 बजे तक काले बादल छा जाते हैं और पूर्ण अंधेरा हो जाता है तथा कुछ ही क्षणों में ही घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। 4 बजे के बाद वर्षा रुक जाती है, आकाश साफ हो जाता है तथा उष्णता कम हो जाती है। भूमध्य रेखीय भागों में इस तरह की वर्षा वर्ष के गर्म मौसम तथा दिन के समय होती है। वर्षा रोज नियमित रूप से होती है। संवहनी वर्षा के अल्पकालिक तथा तीव्र होने के कारण अधिकांश जल नदियों द्वारा सागर में चला जाता है और भूमि क्षरण तथा अपरदन अधिक होने लगता है। समशीतोष्ण भागों में भी संवहनी वर्षा होती है, परंतु यहाँ पर मूसलाधार रूप में न होकर सामान्य रूप में होती है, जिस कारण अधिकांश जल मिट्टियों में संविष्ट हो जाता है। यहाँ पर वर्षा गर्मियों में होती है। उष्ण रेगिस्तानों में भी संवहनी वर्षा होती है, परंतु वायु की आर्द्रता की कमी के कारण उसे अधिक ऊंचाई तक जाना होता है। इन भागों में वर्षा नियमित न होकर आकस्मिक रूप से होती है। धरातल के अत्यधिक गर्म होने के कारण वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराओं से होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा कहा जाता है। बी, पर्वतीय जल वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। उष्ण एवं आर्द्र वायु जब पर्वतों से टकराती है तो वह बाध्य होकर ऊपर उठती है। इससे जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतों के द्वारा वायु के ऊपर उठने में जो सहायता मिलती है उसे ट्रिगर प्रभाव, ट्रिगर इफेक्ट कहा जाता है। वर्षा के परिणाम स्वरूप संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु में मिल जाती है, जिसके कारण वायु का ऊपर उठना जारी रहता है और वायु आर्द्र एडियाबेटिक ताप पतन दर प्रति हजार मीटर पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडी होकर बढ़ती ऊंचाई पर भी वर्षा करती है। यही कारण है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, एक निश्चित सीमा तक ही। पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है उसे पवनमुखी ढाल, विंडवार्ड स्लोप कहते हैं तथा वर्षा इस ढाल पर होती है। इसे वृष्टि ढाल, रेन स्लोप भी कहा जाता है। पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल, लीवार्ड स्लोप कहा जाते हैं। वायु के लीवार्ड स्लोप के सहारे उतरने के कारण हवा का तापमान प्रति हजार मीटर पर 10 डिग्री की दर से बढ़ने लगता है, जिस कारण वायु की शुष्कता बढ़ती जाती है, क्योंकि वायु की आर्द्रता सामर्थ्य में वृद्धि के कारण सापेक्षिक आर्द्रता घटती जाती है। फलस्वरूप लीवार्ड स्लोप पर वर्षा नहीं हो पाती है। अतः इस ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन कहते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। पर्वतीय वर्षा की आवश्यक दशाएं। पहला, पर्वतों की स्थिति पवन के चलने की दिशा के समकोण पर होनी चाहिए। दूसरा, पर्वतों के पवनों के मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों की ऊंचाई भी पर्याप्त हो जिससे बादल बनने की दशा उत्पन्न हो सके। तीसरा, पर्वतों की स्थिति समुद्र के समानांतर एवं नजदीक होने पर वर्षा के लिए उत्तम दशा उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इनकी स्थिति आंतरिक भागों में दूर होने पर वर्षा कम या नहीं होती है क्योंकि लंबे मार्ग में पवनों की नमी समाप्त हो जाती है। चौथा, पवनों में नमी की उपलब्धता एवं अस्थिरता होनी चाहिए। यदि पवन स्थिर है तो पर्वतों के होने के बावजूद भी वर्षा नहीं होती है क्योंकि स्थिर वायु नीचे उतरने लगती है। पांचवा, पर्वत घाटियों के फनेल प्रभाव से जनित अभिसरण वर्षा के लिए काफी सहायक होती है। सी, चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा संवहनी वर्षा की तरह ही होती है क्योंकि इन भागों में मिलने वाली दो हवाओं के गुणों में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, अतः गर्म हवा थोड़ी कम गर्म हवा द्वारा ऊपर उठा दी जाती है तथा वायु का ऊपर उठना लगभग ऊर्ध्वाधर होता है। इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबंध में जब दो विपरीत गुणों वाली हवाएं मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है तथा सापेक्षतया अधिक गर्म वायु वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है एवं संघनन शुरू होने के कारण वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अतः वैसी वर्षा को चक्रवाती वर्षा साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधों में हवाओं के दो तरह मिलने से वाताग्रों का निर्माण होता है। पहला, जब अधिक ठंडी वायु थोड़ी गर्म वायु की तरफ जाकर मिलती है तो ठंडी वायु गर्म वायु के अंदर के तरफ घुसती है तथा गर्म वायु को ऊपर उठने के लिए बाध्य करती है। दूसरा, जब गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ जाकर मिलती है तो गर्म वायु हल्की वायु के कारण ठंडी हवा में घुस नहीं पाती और वाताग्र के सहारे ऊपर उठने लगती है। अतः इन दोनों दशाओं में सापेक्षतया गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे संघनन के फलस्वरूप बादल बनने से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसी वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में हवाएं सीधे ऊपर नहीं उठती हैं बल्कि थोड़ी तिरछे उठती हैं। यह वर्षा मध्यम गति से लगातार बड़े क्षेत्र पर पाई जाती हैं। अयनवर्ती भागों में भी गर्मियों में चक्रवाती वर्षा होती है। भारत की मानसूनी वर्षा को चक्रवाती बताया जाता है। उत्तरी भारत में जाड़े के मौसम में पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से हल्की वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा में संघनन शीघ्र हो जाता है जिस कारण वर्षा तेज होती है, बिजली चमकती है तथा बादल भी गरजते हैं, ओले भी पड़ते हैं। वर्षण का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। पृथ्वी पर औसत वार्षिक वर्षा 97 सेंटीमीटर 39 इंच पाई जाती है, परंतु यह मात्रा सर्वत्र समान नहीं होती है। कहीं पर यह मात्रा 10 सेंटीमीटर से भी कम थार्मल स्थल, कहीं पर 1200 सेंटीमीटर से अधिक चेरापूंजी मौसिनराम भारत है। इतना ही नहीं, यह मात्रा भी वर्षा वर्ष भर में समान रूप से प्राप्त नहीं होती है। वार्षिक औसत का अधिकांश भाग वर्ष के कुछ महीनों में ही प्राप्त हो जाता है, जबकि शेष महीने या तो सूखे होते हैं या निहायत कम वर्षा प्राप्त करते हैं। दोनों गोलार्धों की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास मिलती है, परंतु दोनों गोलार्धों में कटिबंधीय विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरणतः 0 से 10 डिग्री नॉर्थ में 0 से 10 डिग्री साउथ की तुलना में अधिक वर्षा अंकित की जाती है। यह स्थिति साल भर डोलड्रम भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होने के कारण संभव होती है। पछुआ हवाओं के क्षेत्र में 46 से 60 डिग्री दक्षिण तथा 40 से 60 डिग्री उत्तर की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। इसका कारण विस्तृत सागरीय भाग की उपस्थिति है। यदि महाद्वीपों एवं महासागरी भागों की तुलना की जाए तो महासागर के ऊपर उच्च वर्षा पाई जाती है। संपूर्ण वर्षा का सिर्फ 19% भाग महाद्वीपों पर तथा शेष 81% वर्षा महासागरों पर संपादित होती है। सिर्फ 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में स्थित स्थल के ऊपर वार्षिक वर्षा सागरों की तुलना में अधिक होती है। जिन भागों में हवाएं नीचे बैठती हैं उन भागों में वर्षा कम होती है। उदाहरण के लिए उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी महाद्वीप में हवाओं के उतरने के कारण बहुत कम वर्षा मिलती है। उत्तरी अफ्रीका, अरब एवं ईरान के मरुस्थलीय क्षेत्र भूमध्य रेखा की तरफ फैले ट्रेड विंड के प्रभाव में पड़ते हैं। इसका अपवाद, जब ट्रेड विंड समुद्रों को पार कर तटवर्ती भागों में पहुंचकर पर्वतों से टकराती है तो अच्छी पर्वतीय वर्षा करती है। मेडागास्कर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अधिक एवं भारी वर्षा की मात्रा भूमध्य रेखीय अक्षांशों में मिलती है। उच्च तापमान, सागरों का विस्तार तथा अस्थायी वायु के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा होती है। इन भागों में वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। उष्णकटिबंधों में कांगो और अमेजन बेसिन तथा प्रशांत एवं हिंद महासागर के द्वीपों में सर्वाधिक वर्षा होती है, परंतु अटलांटिक महासागर के द्वीपों पर उपरोक्त द्वीपों की अपेक्षा कम वर्षा दर्शाते हैं। मध्य अक्षांशीय वर्षा पछुआ हवाओं से प्रभावित होती है तथा वर्षा की मात्रा 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। महाद्वीपों का पश्चिमी तट 30 से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी पतली पेटी में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मध्य अक्षांशीय का अधिकांश हिस्सा भूमध्य रेखा के नजदीकी क्षेत्रों में होती है, ब्रिटिश कोलंबिया एवं दक्षिणी पूर्वी अलास्का उत्तरी गोलार्ध में तथा पेट्रोगोनिया का दूरस्थ दक्षिणी तट दक्षिणी गोलार्ध में उपयुक्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशों एवं आर्कटिक प्रदेशों में वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, जिसकी मात्रा 25 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। कम तापमान के कारण वायुमंडलीय जलवाष्प भी कम पाई जाती है, जिससे वर्षा नहीं होती, लेकिन कम तापमान से वाष्पीकरण कम हो जाता है, जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी मिलती है। पश्चिमी दिशा की तरफ रुख किए पर्वत ढलान पूर्व की ओर रुख किए पर्वत ढलान की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के पश्चिमी स्थलीय भाग सहारा, कालाहारी, कैलिफोर्निया, चिलियन तथा पेरुवियन व ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा पूर्वी स्थलीय भागों की वर्षा में पर्याप्त विभेद मिलता है। पूर्वी भाग में वर्षा उच्च होती है। वर्षा का ऋत्विक वितरण, सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। किसी भी वर्षा की संपूर्ण वास्तविक संचित वर्षा की मात्रा, वर्षा के मौसमी वितरण, वर्षा की निर्भरता तथा वर्षा की बारंबारता पर आधारित होती है। अच्छी वर्षा के क्षेत्र अभिसरण मेखला कन्वर्जेंस जोन से संबंधित होते हैं। यह अभिसरण क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में गर्मी में उत्तर की तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े में दक्षिण की तरफ खिसकता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो अभिसरण क्षेत्र में पड़ते हैं साल भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। इन क्षेत्रों के कुछ भाग उत्तर दक्षिण जो क्रमशः अभिसरण मेखला तथा उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से प्रभावित होते हैं गर्मी में आर्द्र एवं जाड़े में शुष्क होते हैं। मध्य अक्षांशों में स्थित कुछ पश्चिमी तट गर्मी में शुष्क एवं जाड़े में आर्द्र रहते हैं। मानसूनी वायु प्रणाली में ऋतविक विभिन्नता अधिक मिलती है। इन्हीं पवनों से गर्मी की ऋतु आर्द्र एवं जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। मानसून द्वारा उत्पन्न वर्षा की मौसम से संबंधित विभिन्नता भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेष रूप से पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा की अपेक्षा वार्षिक वर्षा प्रवृत्ति एनुअल रेनफॉल रिजीम अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव मानवीय क्रियाओं खासकर कृषि पर पड़ता है। वर्षा की निर्भरता को औसत वर्षा से विचलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वर्षा की निर्भरता आर्द्र जलवायु में अधिक तथा कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम पाई जाती है। इसका महत्व उप आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए बहुत होता है, क्योंकि ऋणात्मक विचलन किसी महीने में फसल को पूर्ण नष्ट कर देता है। वर्षा की बारंबारता भी आर्थिक क्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण स्वरूप, किसी स्थान की कुछ दिनों की भारी वर्षा दूसरे स्थान के कई दिनों तक चलने वाली हल्की वर्षा से कम उपयोगी होती है। वर्षा का कटिबंधीय वितरण, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पहला, भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री तक पाया जाता है। यह प्रदेश इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ के अंतर्गत आता है, जहां पर गर्म एवं आर्द्र वायु राशियां होती हैं। यहां वार्षिक वर्षा का औसत 175 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। वर्षा मुख्य रूप से संवहनी होती है, जो कि बादलों की गरज तथा बिजली की चमक के साथ प्रतिदिन दोपहर के बाद मूसलाधार रूप में होती है। फिर थोड़े समय में बादल छट जाते हैं तथा मौसम साफ हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन के साथ ही साथ इस अधिकतम वर्षा की पेटी में क्रम से उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। दूसरा, व्यापारिक वायु द्वारा वर्षा वाली पेटी। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है, जो सागरों के ऊपर से आने के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करती है, परंतु महाद्वीपों के ऊपर चलने के कारण पश्चिम भाग में शुष्क हो जाती है, जिस कारण मौसम सूखा रहता है तथा रेगिस्तान पाए जाते हैं। इन्हीं अक्षांशों में मानसूनी प्रदेशों में पर्याप्त वर्षा होती है। गर्मियों में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तीसरा, उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा की पेटी। उपोष्ण कटिबंध 20 से 30 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। यहाँ पर हवाएं आकर उतरती हैं एवं प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे वर्षा नहीं होती है। इन भागों की औसत वर्षा 90 सेंटीमीटर आकी गई है। इस भाग में विश्व के गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस भाग में औसत अधिक वर्षा का कारण समुद्र के ऊपर से आने वाली नम व्यापारिक हवाओं के द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पर्याप्त वर्षा करना है। यहाँ गर्मी में वर्षा होती है तथा जाड़ा शुष्क होता है। चौथा, भूमध्य सागरी वर्षा वाली पेटी। इसका विस्तार 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जहां पर वर्षा शीतकाल में पछुआ हवाओं द्वारा चक्रवातों से होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर होता है। गर्मियां सूखी व्यतीत होती हैं, क्योंकि इस समय ये भाग व्यापारिक पवनों के प्रदेश में आ जाने से प्रति चक्रवाती दशाओं से प्रभावित होते हैं। पांचवा, मध्य अक्षांशी अधिक वर्षा की पेटी। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पछुआ हवाओं के कारण 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है तथा आंतरिक भागों में घटती जाती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सागर के अधिक विस्तार के कारण वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर ध्रुवी तथा पछुआ हवाओं के मिलने के कारण चक्रवातों का निर्माण अधिक होता है, जिनसे जाड़े में सर्वाधिक वर्षा होती है। इन भागों में वर्षा दीर्घकालिक होती है, परंतु हल्के रूप में होती है। छठा, ध्रुवी निम्न वर्षा की पेटी। 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है तथा 75 अक्षांश के आगे वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर ही रह जाता है। अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है।